ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। देहो यज्ञजिता सर्ववर्गो नेच्छंग कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानम् कर्माणक्षाद्य मुह्यति। देही देहधारी आत्मा अज्ञा पूर्ण ज्ञान से रहित अजित शब्द अजित शब्द वर्ग जिसने अनुभव इंद्रिया तथा मन को बस में नहीं किया, न इच्छन न चाहते हुए कर्मारी भौतिक लाभ के लिए कर्म कार्यते करवाया जाता है। कोशकार रेशम के कीड़ा ईवा सदृशा आत्मन स्वयं कर्मणा सकाम कर्मों से अछद्य आवृत करके मुह्यते मोहित हो जाता है। अनुवाद। अपनी इंद्रियों तथा मन को बस में न करने में असक्षम मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। वह उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग बाह्य कोष बनाने के लिए करता है और फिर उसी में बंध जाता है, जिसमें से बाहर निकल पाने की कोई संभावना नहीं रहती। जीव अपने ही सकाम कर्मों के जाल में अपने को बंदी कर लेता है और तब अपने को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता। इस तरह वह सदैव मोहग्रस्त रहता है और बारंबार मरता रहता है। समझ गए होंगे आप लोग काफी। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रकृति के गुणों का प्रभाव अति प्रबल है। विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों में फंसा जीव बाह्य कोष बंदी रेशम के कीड़े के समान है, जब तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी सहायता नहीं करते, उसी मुक्त इससे मुक्त हो पाना अत्यंत कठिन है, नहीं हो सकता है। दूसरा श्लोक भी हम ले लेंगे इसमें। जो व्यक्ति असक्षम है, प्रभुपाद जी एक शब्द कहते हैं जितेंद्रिया और अजितेंद्रिया। जितेंद्रिय उसे कहते हैं जो अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया है, उसका अधिकार है अपने इंद्रियों पर। इंद्रिया माने तो सभी भक्त हैं, संत हैं, समझते हैं। पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, पांच कर्म इंद्रिय हैं और एक मन है। इंद्रियों का सबसे निकट संबंध मन से है, मन के बिना कोई भी इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। यदि मन आपका इंद्रियों के साथ नहीं है, कान के साथ आपका मन नहीं है, नाक के साथ आपका मन नहीं है, आंख के साथ आपका मन नहीं है, तो मन के बिना आंख देख नहीं पाता है, कान सुन नहीं पाता, नाक से कोई सुगंध नहीं ले सकते आप। मन मालिक है इसमें, और मन का संबंध आत्मा से है, भगवान से है उसका। जो असक्षम है, जो अजितेंद्रिय है, जो अपने इंद्रियों से हार चुके हैं, बलात् इंद्रियां नियोजितः, गीता में भगवान कहते हैं जबरदस्ती कभी कभी इंद्रियों को विषय में लगा दिया जाता है। अर्जुन का प्रश्न है कि जीव न चाहते हुए पाप क्यों कर लेता है। कभी कभी हम जीव पाप नहीं करना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं, परंतु कभी कभी जबरदस्ती करना पड़ता है, बलात् करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि बलात् इंद्रियां नियोजित है। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु जबरदस्ती कौन करता है, तो अंदर में हमारे अंदर न काम क्रोध है, प्रकृति के तीन गुण भी है, रजो तमो सत, रजोगुणी है, तमोगुणी है, कभी कभी सतोगुणी में भी आ जाते हैं। ये प्रकृति के जो तीन गुण है उसी से बंध करके जीव अनिच्छित न चाहते हुए भी जीव पाप कर लेता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण सम उद्भव, ये सब प्रेरित करता है जीव को। यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं अनुवाद में कि अपने इंद्रियों तथा मन को वश में करने में असक्षम मूर्ख देहधारी जीव, वह असक्षम है। अरे भाई, इंद्रियां तो हमारे शरीर में ही है, मन ही अपना है। कहते हैं आज कभी कभी कहते हैं आज मन बड़ा खराब है। अरे मन का है खराब है, तुम्हारा ही तो मन है। कुछ बात होता है तो कहते आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मेरा यानी मेरा मन नहीं कर रहा है। आप ही का तो है, आपके साथ ही तो है, ये क्यों जबरदस्ती कर लेता है, ये आपके साथ ही रहता है। ये असक्षम अजितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों से हार गया है व्यक्ति, वह देहधारी जीव, प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी इंद्रियों के इच्छा के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है, जबरदस्ती कराया जाता है, न चाहते हुए भी इंद्रियां विषयों में लगा देती हैं, बाध्य हो जाता है। प्रकृति का गुण भी प्रबल है। आज कोई भक्त हमसे पूछ रहे थे गुरु पूजा से पहले की भगवान से हमारा संबंध हो सकता है, अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी पूछते हैं, बैठे हैं शायद घर में हम अकंत, भगवान से संबंध कैसे हो सकता है? क्या हम लोग इसी जन्म में प्रकृति के गुणों से मुक्त हो सकते हैं? आप सब तो मुक्त ही हैं, 3 बजे बिस्तर को छोड़ देना ये तमोगुण से मुक्ति तो है। 3 बजे बिस्तर छोड़ करके शरीर को धक्के दे करके बाथरूम में ले जा करके डंडे जैसे पटक देते हैं और पानी डाल करके और साफ करके तिलक सजा करके भगवान के पास आ जाते हैं, यही तो विजय है। वास्तव में जो हमारे मंदिर में जो भक्त रहते हैं वे बहुत उत्तम क्लास के भक्त हैं, मंगला आरती जप निष्ठा से कर लेते हैं, गुरु पूजा क्लास बहुत सुंदर करते हैं, बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं ये लोग। आप क्या सोचते हैं कि 3 बजे नींद त्यागना इतना सरल है? जाकर के पूछिए संसार में जो लोग रहते हैं, 3 बजे तो उनकी आधी रात होती है, 12 बजता है उनका, 3 बजे तो उनको नींद आती है। और आजकल और भी चल गया है ये तमोगुणी चीज, रजोगुणी है, मोबाइल में क्या करते हैं उसको है? हाँ व्हाट्सएप, उसके बाद एक और है ना कोई, यूट्यूब चल गया है। वो जहाँ एक बार खोल दो तो सोने ही नहीं देता आदमी को, वैसा ही हमारा इंटरेस्ट भागवत जी में होना चाहिए। हमें गुरु की आज्ञा पालन करते हुए भगवान से प्रेम करते हुए जितेंद्रिय बनना है। भक्त पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है? संभव है, हमारे अंदर इसलिए इसका अभाव महसूस होता है क्योंकि हम बहुत गंभीर नहीं हैं, बहुत सीरियस नहीं हैं, जब करते समय सीरियस नहीं हैं, क्लास में बहुत गंभीर नहीं हैं। क्लास में शरीर बैठा है, अभी कुछ दिन पहले रामाकांत प्रभु यहाँ क्लास कर रहे थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, मैं भी आके पीछे बैठा था, बहुत सुंदर बात कर रहे थे, वो पूरी भागवत किया था उन्होंने, उसमें वो कथा कर रहे थे और पीछे में बैठ करके लोग मोबाइल देख रहे थे, मैं देखा, और कुछ लोग बात भी कर रहे थे। ऐसे लोगों को ही असक्षम कहा गया है, जो अपने इंद्रियों से हार गया है, वो अजितेंद्रिय है, वो शरीर क्लास में बैठा है, कथा में बैठा है, भगवान के दिव्य कथाएं सुनाई जाए, चाहे कथा अच्छी हो या भाषा उसकी ठीक ना हो या कहने की शैली ना हो, लेकिन है तो प्रभु की कथा, उसको बड़े सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और ध्यान पूर्वक सुन करके क्या होना चाहिए? जितेंद्रिय बनना चाहिए। जितेंद्रिय का मतलब होता है जैसे इंद्रियां कहती हैं वैसे नहीं करना है, जैसे हम कहते हैं वैसे करना है। जहां आंख देखना चाहती है वहां नहीं देखेंगे, जहां हम देखना चाहते हैं वहां आंख वहां हम देखेंगे, जो कान सुनना चाहता है वो हम नहीं सुनेंगे, जो हम सुनना चाहते हैं वो कान सुने। पांव वहां ना जाए जहां जाना चाहता है ये पांव पैर, जहां हम जाना चाहते हैं वहां पैर चले, इसको जितेंद्रिय कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी में एक बड़े सुंदर भक्त का प्रतिपादित किया गया है, निरूपण किया गया है, सुदामा जी का। सुदामा जी के जीवन में बहुत गरीबी थी, लेकिन गरीब नहीं थे वो, कहते हैं वैसे तो गीत में गाते रहते हैं, सुदामा जी के जैसा तो धनवान कोई व्यक्ति था ही नहीं, लेकिन बाह्य रूप से उनके शरीर पर वस्त्र ठीक नहीं था, पांव में चप्पल जूते भी नहीं थे, सर पर पग भी नहीं था, शरीर वृद्ध भी हो गया था, लकड़ी के आधार से चलते भी थे, परंतु उनके चेहरे पर तेज बहुत था, अब वो तेज भगवान का था, उसमें भक्ति का तेज था उसमें। सुदामा जहाँ जाना चाहते थे वहाँ जाते थे, जो बोलना चाहते थे वो बोलते थे, जिह्वा जो बोलना चाहती थी उसको नहीं बोलते थे वो। हम तो दिन में न जाने कितने बात बोलते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, फिर भी बोलते रहते हैं हम सब। जिह्वा का दो ही काम है, बोलना और खाना। यदि जिह्वा कंट्रोल नहीं है बोलने पर खाने पर, रूप गोस्वामी जी कहते हैं वाचम बेग मनस, वाणी का बेग, मन का बेग, वाचम बेग मनस क्रोध बेगम, क्रोध जब आ जाओ उसका बेग, बेग मने तो आप समझते हैं फोर्स जब आता है उनमें से, वाणी का बेग, क्रोध का बेग, उदर का बेग यानी भूख का बेग, जन इंद्रियों के बेग, इतने बेग को जो सहन कर लेता है, संभाल लेता है, अपने को सुरक्षित कर लेता है, वही धीर पुरुष है, वही विद्वान है। और उसके लिए नहीं कहना पड़ेगा कि तुम मेरा शिष्य बनो या मेरा अनुगत हो जाओ या शरणागति ले लो, नहीं। पृथ्वी पर जितने जीव हैं वह स्वतः आकर के भिक्षा के रूप में मांगते हैं कि मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूं, स्वयं कहता है आकर। तो जो लोग असक्षम हैं, जिनकी इंद्रियां काबू में नहीं है, वो प्रकृति के गुण से बाध्य होता है और वह उस रेशम के कीड़े के समान है। रेशम के कीड़ा होता है जो रेशम छोड़ता है धागा, वो अपने मुख से ही छोड़ता है और छोड़ते छोड़ते जाल बनाता है, रस्सी बना देता है, धागे बना देता है, उसी में फंस जाता है और उसका जीवन उसी में फंस करके समाप्त हो जाता है। वो ऐसा ही हम सब अपने कर्म बंधन में ही फंसे हैं। हम कहते हैं ना, व्यक्ति ने मुझे बड़ा कष्ट दिया। नहीं नहीं, किसी ने किसी को कष्ट नहीं देता है, किसी व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता है। संत लोग कैसे कहते हैं, नहीं नहीं वो दुख तो मेरा ही था, मेरा ही कर्म फल था, उसके द्वारा आया हुआ है। किसी ने गाली दिया, किसी ने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, आपको अपमानित कर दिया, उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। संत इस प्रकार से लेता है इसको, उस व्यक्ति का कोई गलती कोई दोष नहीं है, वो तो मेरा ही कर्म फल था, उस व्यक्ति के द्वारा मिला, हे प्रभु उसको क्षमा कर देना, उसका कोई गलती नहीं। महात्मा हरिदास जी को कई एक बाजारों में संत लोग कहते हैं कि 22 बाजार में घुमा घुमा करके मारे, एक दो बाजार में नहीं, 22 बाजारों में घुमा घुमा करके मारे, इतना चोट दिया, इतना चोट गंभीर दिया, लेकिन हरिदास महात्मा ने एक बार भी कृष्ण के नाम का विस्मृति नहीं हुई, नाम लेते रहे, संपर्क था ना भगवान से। रूपा जी कहते हैं ना कि निरंतर जाप करने से भगवान से संपर्क रहता है, जीवन में सुख हो या दुख हो, कोई भी यात्रा हो, सुख की यात्रा हो, दुख की यात्रा हो, या संपदा की यात्रा हो, ऐश्वर्य भोग समान की यात्रा हो, सब अवस्था में कृष्ण से संबंध बना करके रखिए उनसे। और कलयुग में बहुत सरल है, संबंध बनाने का उपाय केवल महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 आप। हम सबको बोलने में विलंब हो जाता है कि अब प्रभु के नाम लेना है, सोचने में विलंब हो जाता है, जैसे सोचते हो उससे पहले ही आकर के हमारे प्रभु जिह्वा पर विद्यमान हो जाते हैं। अब मेरा नाम लेने वाला है ये, अब मेरा नाम लेने वाला है, जिह्वा पर आ जाते हैं, प्रभु से संपर्क बन जाता है, संबंध जुड़ जाता है प्रभु से। और जब जीव नाम लेता है उस जीव को बड़ा आनंद देते हैं, सुख देते हैं। हरिदास जी को न जाने शरीर पर कितने कोड़े बैठे, कितने चाघुक लगाया, लेकिन नाम का आश्रय नहीं छोड़ा, फेंक दिया। होश आने के बाद में हरिदास जी देखिए कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसने हमें दंडित किया है, जिसने हमें मारा है, उसका कोई दोष नहीं प्रभु, उसका कोई भूल कोई गलती नहीं, ये तो मेरा ही कर्म फल था, तो मेरा ही था। इस प्रकार से संत महात्मा इस बात को लेकर के अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, अपने को आरक्षित कर लेते हैं। कर्म बंधन में जीव फंस करके प्रकृति के गुणों के प्रभाव से हम तीनों गुण में ही रहते हैं। अभी वो भक्त पूछ रहे थे कि ये तीनों गुण में, बोला कि तीनों गुण काम का है, ये अपने जीवन में बड़ा सुंदर काम आता है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। तमोगुण भी काम का तत्व है, यदि नहीं होता तो भगवान जीव के मित्र हैं, जीव के सुहृद हैं, ये तमोगुण रजोगुण बनाते ही नहीं। तमोगुण की आवश्यकता कब है? 9 बजे से 3 बजे तक रात्रि में। किसी किसी को तमोगुण जब नहीं आता है, नींद नहीं आती है, तो उनको बाहर से गोली खाना पड़ता है, तब थोड़ी सी झटका लेते हैं, नींद आती है। यदि आपको रात्रि में नींद ना आए ठीक से, तमोगुण ना हो, तो आप मंगला आरती में आ सकते हैं? शरीर अलाउ नहीं करेगा, आपको बन जाएगा। अधिकारी पूछेगा प्रभु आज मंगला आरती में नहीं आए, बोलेंगे क्या करें रात में नींद नहीं आई, शरीर बड़ा कसर मसर कर रहा था। ये अभी समय आप लोगों को सतोगुण की आवश्यकता है, कथा में बैठे हैं तो इस समय तमोगुण आ रहा है, उल्टा आ रहा है सब। सावधान बहुत सावधानी की जरूरत है, बड़ी आवश्यकता है सावधानी। सीधा बैठिए ब्रह्मचारी जैसा, झुकने पर तो भी झुका देती है नींद, मौका मौका ढूंढती रहती है। तो जीवन में तमोगुण की भी आवश्यकता है, नहीं तो प्रभु बनाते नहीं इसे। प्रकृति के गुण जो है वो कार्य करने में सिद्ध होता है, ये सिद्ध प्रतीत होता है। रात्रि में आपको तमोगुण की आवश्यकता है, 9 बजे बिल्कुल लाइट बंद हो जाए और 3-3.5 बजे लाइट ऑन हो जाए, आप बिस्तर को त्याग दीजिए और तमोगुण को त्याग करके खड़े हो जाइए। अरि निंद्रा चढ़ी उठ जीव, आगे वाली आप बोलो, स्वर में गाओ ना थोड़ा, बोलो हरि हरि हय ग्रीव। छोड़ देना है बिल्कुल, तमोगुण को त्याग कर देना है। कब? 3-3.5 बजे के बीच में। कभी कभी आप दूर रहते हो उस समय भी त्याग सकते हैं, अपने घर में बैठे हो, यदि दूरी है तो आप वही मंगल आरती कर लीजिए, क्या दिक्कत है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि हर घर में मंदिर होना चाहिए, ऐसे बड़े मंदिर में आना बहुत जरूरी है, यहाँ संतों का दर्शन हो जाता है, प्रभुपाद जी को फूल चढ़ाने को मिल जाता है, कभी कभी सौभाग्य हो तो हार भी मिल जाता है उनका, प्रभुपाद जी का, फिर प्रभु का दिव्य दर्शन हो जाता है। और यदि अकस्मात कहीं आप फंस गए हो तो अकेले जरूर मंगल आरती कर लेना चाहिए, तभी भगवान से और गुरु से आपका संपर्क बना रहेगा। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण के कृपा के बिना भक्ति को बढ़ाना बड़ा कठिन है, बढ़ ही नहीं सकता है। गुरु की कृपा होनी चाहिए, तब भगवत कृपा तो स्वाभाविक है, मिली जाएगा आप। फिर इसके बाद रजोगुण की हो सकता है, प्रकृति का एक गुण है रजोगुण भी। अब दिन में आपको कार्य करना है, पैसे कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए आपको जग करके रजोगुणी बनना पड़ता है। कभी कभी संत महात्मा लोग भी उसी भाषा में आ करके पैसे एकत्र करते हैं, लेकिन उनको रजोगुणी नहीं कह सकते क्योंकि वो भगवान के लिए सब करते हैं। यदि संत क्रोध भी करके किसी से कुछ लेता है भगवान की सेवा में, तो उसको आप रजोगुणी नहीं कह सकते। आप तो प्रभु से जुड़ा हुआ है, प्रभु के सेवा के लिए वो सब कुछ कर रहा है। तो ये दिन में आपको रजोगुण की आवश्यकता है। इस समय तो कथा सुन रहे हैं, आपको सतोगुण की आवश्यकता है। इस समय सीधा होकर के बैठना, एक एक शब्द अपने कानों में डालना भागवत जी का, सीधा होकर के कथा सुनना, हृदय गमन करना, बैठना, ये सतगुण का लक्षण है। तीनों गुण प्रभु ने बनाया है, लेकिन अजितेंद्रिय लोग जो असक्षम हैं, जो अपने इंद्रियों से हार चुके हैं, ऐसे लोग जब तमोगुणी रजोगुण में प्रविष्ट होते हैं, तो वे लोग कीड़े के रेशम के धागा के भांति अपने जीवन को बांध लेते हैं, और एक दो जन्म नहीं महाराज, जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं उनके, वो संसार के चंगुल से छूट नहीं पाते हैं। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, जैसे किसी अपराधी को राजा दंड देता है नदी के किनारे ले जा करके, कभी जोर से उसको जल में डुबो देता है, जब बिल्कुल अशांत हो जाता है, मरने मरने जैसा हो जाता है, फिर जल से बाहर निकालता है, फिर जल में डाल देता है, उसी प्रकार से प्रकृति का जो गुण है जीव को बहुत कष्ट देती है, बहुत दुख देती है। इसलिए इससे बचाव रखने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ये उपाय बताया है। हृदयस्थ या अभद्राणी, हमारे अंदर जो अकल्याण तत्व बैठा है, जो अमंगल करने वाला जो सूत्र बैठ गया है, इसको साफ करने के लिए नित्यम भागवत सेवाया। दो प्रकार के भागवत हैं, एक भक्त भागवत है और एक ग्रंथ भागवत है। इसलिए महाप्रभु ने कहा भागवत सुना गया भागवत मुखे, ऐसी है ना, भागवत को कथा को भागवत के मुख से ही सुनना चाहिए। ग्रंथ भागवत की कथा भक्त भागवत से ही सुनना चाहिए, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, ज्यादा जीवन में प्रभाव डाल सकता है। ये संसार से दुख, संसार के दुखों से बचने के लिए बड़ा सुंदर उपाय प्रभुपाद जी ने बनाया। इसको बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु हो जाना, ये बुद्धिमत्ता थोड़ी है। और इस भागवत को सुनने के लिए जीवन में सहिष्णु होना, यानी विनम्र होना, और भगवान के चरणों में शरणागति ले लेना, समर्पण हो जाना, ये और कारगर सिद्ध होता है। यदि आपके जीवन में शरणागति है गुरु कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण हो, प्रपन्नता हो, अर्जुन ने क्या कहा, शिष्य हम साधि त्वाम माम प्रपन्नम, मैं प्रपन्न हूं आपका, आपका प्रपन्न शिष्य हूं, शरणगत शिष्य हूं, आपका हम शरणागति लेते हैं। तब भगवान गुरु के पद पर होकर के बड़ी सुंदर पूरी गीता सुना दी अर्जुन को, पूरी बात कह दी प्रभु ने, गुह्य से गुह्य बात कह दिया प्रभु ने। नौवा अध्याय में गुह्य की बात कहते हैं भगवान, इदम ते तु गुह्यतम, आओ तुमको मैं बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत सीक्रेट बात बताने जा रहा हूं, आ जाओ। और प्रभु ने भक्ति योग की बात बता दिया, जो किसी से नहीं कहा, समर्पण शरणागति, यही माया के अधिकार से प्रकृति के प्रभाव से छुटने का उपाय है। ये कोई बहुत बड़ी बुद्धिमता और चलाकी नहीं है जो बार बार देह धारण करें, बार बार शरीर लें। बड़ा अभी सुंदर शरीर मिला है आप हम सबको, और सुंदर शरीर के साथ साथ बड़ा सुंदर सुअवसर भी प्राप्त है। अब ऐसा सुनावला सुअवसर कहाँ मिलेगा? देखो भक्त लोग कैसे दिख रहे हैं, देवता के जैसे दिख रहे हैं, सबके ललाट पर चमक है, ललाट पर तिलक है ना, इसलिए। और यहाँ गेट से बाहर निकल करके जाकर के देखो, न जाने चमक लाने के लिए क्या क्या लगा रखे हैं, फिर भी नहीं आता। और भक्त लोग बिना कुछ लगाए सुबह कुछ तेल तुल मिल जाओ भी ठीक है, तो ऐसी तिलक रगड़ के चल देते हैं, फिर भी सुंदर लगते हैं, क्योंकि प्रभु के साथ बैठे हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़े हैं, प्रभुपाद जी से जोड़े हैं अपने को, इसलिए सुंदर हैं। शरीर बदल रहा है, आज के सुबह में जो सुंदरता थी, अब ये 9 बजने वाला है, 9 बजे सुंदरता कम हो गई है हम लोगों की। देहांतर हो रहा है ना, देह में अंतर पड़ रहा है, अंतर आ रहा है। कल शाम को जो हमारे आंखों में देखने की ताकत थी वो सुबह नहीं थी, और शाम को तो बिल्कुल और खत्म हो जाना है। और आंखें ही नहीं, सारी शरीर की ब्यूटी सुंदरता वो सब धीरे धीरे निकल रहा है इसमें से। आवाजें, कान की आवाज, जिह्वा की सुंदरता, आवाज, ये सब कम हो रहा है। जराया यानी बुढ़ापा अपने अधिकार में, कब्जा में कर रहा है ये, और हम बिल्कुल सचेत नहीं, असावधान है, इसको अपने अंदर करने में असक्षम है, नहीं कर पाते हैं। भगवान बुद्ध की कथा है, भगवान बुद्ध तो केशो धृता बुद्ध शरीर, भगवान बुद्ध को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, बड़े घर में अवतार लिए थे प्रभु, शादी इत्यादि भी हो गया, बच्चे भी हो गए, बालक भी आ गए। पिताजी ने सोचा कि अब इसका मन संसार में लग गया। भगवान बुद्ध को वैराग्य बहुत चढ़ता था, हम लोग तो रोज मरे हुए आदमी को देखते हैं, कोई वैराग्य नहीं आता। आदमी जलाने के लिए ले जा रहा है, पीछे से बात भी करते हैं, और जलाने के देर नहीं हुई कि पेट में चाय पानी चालू हो जाता, बता, कोई वैराग नहीं, कोई सीखना नहीं। भगवान बुद्ध को वैराग बहुत आता था। भगवान बुद्ध यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को देख लें, रोगी को देख लें, बाल सफेद हो जाए देख लें, तो वैराग चढ़ जाता था, भागने की बात करते थे। पिताजी कोई शादी के प्रसंग में चले गए तो मंत्री जी से कहा कि मंत्री, ये पूरा दुनिया पूरा संसार इतना ही में है कि और कुछ भी है? मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं सरकार, ये बड़ा संसार जो है बड़ा आकर्षक है, बड़ा हरा भरा है, प्रकृति ने उर्वजा भर रखी है, ये बात सुंदर है, ये बात देखने योग है। प्रभु ने कहा दिखाओगे नहीं? बोले कि आप रथ पर बैठे, आपको दिखाता हूँ। और भगवान बुद्ध रथ पर बैठ गए और गेट से बाहर निकले भगवान बुद्ध। जब हम लोग भी गेट से बाहर जाते हैं ना, आपको सही बताता हूँ, आप भी महसूस किए होंगे कि जब मंदिर के गेट से अंदर आते हो तो ये महसूस होता है कि मेरे अंदर अब तेज आ गया, फुर्ती आ गई। भक्तों के दर्शन करने से ही शरीर में आध्यात्मिक का संचार होने लगता है। और जैसे गेट से बाहर निकलो ना, लाल कपड़ा हो चाहे वाइट कपड़ा हो चाहे कैसा भी वस्त्र हो, और भक्त मंदिर में खूब अच्छा दिखता है, बाहर में फिर वही सब्जी के दुकान पर, फ्रूट के दुकान पर बड़ा खराब दिखता है, सब बड़ा खराब दिखता है। मंदिर में ही शोभा बड़ा लगता है इसका। या 10 भक्त साथ में हो तो फिर प्रभाव डाल के चलते हैं अपना। अब भगवान बुद्ध जब बाहर निकले तो क्या देखा कि संसार में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं सब, चलते चलते रथ। एक देखा कि एक झोपड़ में, झोपड़ी में एक छोटा सा बालक खटिया पर लेटा हुआ है, बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। प्रभु ने कहा, मंत्री जी रथ को रोको, रथ को रोको। बोले क्या है? बोले वो बालक रो रहा है। बोले कि सरकार उस बालक को खटमल खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, बड़ा कष्ट है, भूख भी लगी होगी उसको, इसलिए रो रहा है। और मंत्री कह करके रथ बढ़ा दिया। भगवान बुद्ध का उस बालक को देख करके वैराग चढ़ने लगा कि यहाँ मच्छर भी खाते हैं, यहाँ खटमल भी खाते हैं, यहाँ भूख प्यास भी लगता है। भगवान बुद्ध कुछ दूर आगे गए। मंत्री जी रथ को रुकिए। बोले क्या है? बोले कि एक बालक इतना पीठ के ऊपर बस्ता लेके जा रहा है, किताब लेकर के जा रहा है, ये क्या है? बोले कि वो जो बालक छोटा सा रो रहा था ना, वो अब बड़ा हो गया है, अब वो स्कूल में पेट भरने की विद्या सीखने जा रहा है। पेट कैसे भरा जाए, सीखेगा अंग्रेजी दो चार शब्द, दियो जी दोगे इत्यादि सीख के आएगा। कुत्ता बिल्ली सिखाते हैं ना आजकल के गुरुकुल में, आजकल के स्कूल में गुरुकुल सब बंद हो गया है, तो ये सिखाते हैं कि तुम्हारा पेट कैसे भरे, तुम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बदमाशी कर सकते हो, कॉलेज की खिड़की कैसे तोड़ सकते हो, शिक्षा मिलती है उसमें, ये सब शिक्षा है। शिक्षा तो गुरुकुल में मिलती है बढ़िया से। अब ये सीखने जा रहा है, वही बालक है, अब ये सीखने जा रहा है। और वहाँ से चले, अब बच्चा भी हाँफ रहा था, उसके मुख भी सूखे थे। आजकल देखो ना, जितना वजन बच्चा में होता है ना, उतना ही वजन उसके बस्ता में भी होता है। कुछ दूर तो मैया बाप टांग के ले आते हैं, चल बैठ जा गाड़ी में, हम चढ़ा देते हैं तुमको। ये शिक्षा है आज की विद्या यही है। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में राज विद्या की बात किया। विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या है भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध को जोड़ना, ये सबसे ऊंचा विद्या है। कुछ दूर आगे गया, जब रथ बढ़ा कुछ दूर आगे गए तो क्या देखते हैं कि एक युवक एक युवती आपस में संसार की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, रथ को रोको। बोले क्या है? बोले कि वो दोनों खड़े हैं, बात कर रहे हैं। बोले कि जो बालक अभी शिक्षा लेने जा रहा था छोटा सा पीठ पर बस्ता लेकर के, अब वो सियाना हो गया है, संसार की बात कर रहा है। कुछ दूर रथ जब आगे बढ़ा तो एक बूढ़ा व्यक्ति अपने दरवाजे पर खांसी कर रहा था, खांसी करने में भी असमर्थ था, और खांसते खांसते उस बदहोश होने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा, रथ को रोको। बोले क्या है? बोले वो बूढ़ा व्यक्ति, बोले को जो जवान था ना संसार की बात कर रहा था, अब वो वृद्ध हो गया है, अब उसको खांसी आ रही है, वही शरीर है जवान बचपन, अब वृद्ध हो गया है। भगवान बुद्ध को बैराग चढ़ने लगा देख करके। कुछ दूर आगे गए तो एक व्यक्ति को टांग करके ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोल रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि रथ को रोको। बोले क्या है? बोले वो कौन? बोले कि जो बूढ़ा खांसी कर रहा था ना, वो मर गया है, अब जा रहा है। भगवान बुद्ध का वैराग्य बिल्कुल चढ़ता गया ऊपर। जब कुछ दूर गए तो देखे कि श्मशान में, केसी घाट के आगे श्मशान में दो चार लाशें जल रही थी। बोले ये क्या है? बोले कि वो जो बूढ़ा मर गया था उसको जलाया जा रहा है। भगवान बुद्ध रथ से उतर गए और कहा कि रथ ले जाओ, मैं जीवन में इतना सुंदर तपस्या करूँगा, इतना बढ़िया भजन करूँगा, इतना सुंदर आचरण करूँगा, इतना दिव्य संबंध परमात्मा से जुड़ूंगा, जो मेरे को कभी न मरना हो और न कभी जन्म लेना हो, मैं ऐसा जीवन में उपाय करूँगा। जीवन इसलिए मिला था। आज रामनवमी का नवरात्र का पहला दिन है, एक दो बात राम जी के कहते हैं, थोड़ा सा ना नाराज हो जाएंगे राम जी। नवरात्र में रामनवमी के दिन ही आप जहाँ बैठे हो, जिस प्रांगण में प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम जी का दर्शन कराया था, यानी स्थापना किया था, आज के दिन ही भगवान कृष्ण बलराम का पूजा प्रारंभ हुआ था यहाँ पर इस मंदिर में। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी का जो जीवन चरित्र है वो धर्म का आचरण करने के लिए, ऐसे जितने भगवान के अवतार हैं धर्म के रक्षक और धर्म के पालन करने ही आते हैं। कभी कभी नहीं समझ में आता है भगवान के क्रियाकलाप, तो हम कहते हैं कि भगवान भी ऐसे कर दिए। वो हमारी कमजोरी होती है, हमारी इंद्रियों की कमजोरी है जो हम भगवान को ठीक से नहीं समझ पाते। आइए दो लाइन का एक चीज है उसको सुना देता हूं। भगवान राम जी अपने पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए 14 वर्ष का माता के द्वारा जो एक आज्ञा मिली थी कि 14 वर्ष तपस्वी भेष में बिना चप्पल जूता लगाए तुम्हें जंगल में रहना है और किसी गांव में नहीं जाना है तुम्हें। राम जी को आज्ञा मिली थी, राम जी को वनवास हुआ था। लखन लाल जी ने सोचा कि राम के बिना हमारा यहाँ क्या काम है, राम जी यदि यहाँ नहीं है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर। लखन लाल जी भी चल दिए। जानकी जी तो अभी आई ही थी, जनक पुत्री जानकी जी। जानकी जी ने कहा कि जब मेरे पति जनक अयोध्या में नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मेरे लिए तो वही अयोध्या है जहाँ राम जी रहते हों। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम जी हैं वही अयोध्या हमारे लिए। जानकी जी भी चल दी और तीनों जा रहे हैं। आजकल तो पिता माता की आज्ञा पालन बड़ा कम करते हैं हम सब, करना चाहिए बहुत। माता पिता की आज्ञा खूब पालन करना चाहिए, गुरु के आज्ञा को उनके आदेश को पालन करना चाहिए ठीक से, भगवान से प्रेम करना चाहिए। केवट के पास पहुँच करके राम जी ने कहा कि भैया मुझे गंगा जी से पार जाना है तो मुझे पार कर दो ना। केवट ने कहा कि नहीं नहीं सरकार, मैं नहीं आऊँगा, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं आप कौन हैं मैं जानता हूँ। अब बताइए केवट से और भगवान से कौन सा संबंध था, कौन से जन्मों की बात जानता था राम जी के विषय में। राम जी भी कितने अवतार ले चुके हैं धर्म की रक्षा के लिए, कभी राम बन गए, कभी कृष्ण बन गए, कभी नृसिंह वामन बन गए, लेकिन फिर भी राम रूप में आने के बाद भी केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को आपके मन को बात जानता हूँ मैं। यही भक्त और भगवान में संबंध है। क्या गाते हैं, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान के बिना यह संभव नहीं है। केवट ने कहा कि मैं बिना आपके पैर धोए नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु ने कहा विलंब हो रहा है, जाना है मुझे, तुम नौका लाओ, मुझे जाना है। केवट ने कहा कि नहीं प्रभु, आपको यदि विलंब हो रहा है, जाना ही चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए ना कि यहाँ से थोड़े दूर पर जाओ, घुटने भर पानी लांग के चले जाओ, लेकिन मैं अपने नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु ने पूछा क्यों, केवट ने कहा कि सरकार मैंने संतों से सुना है कि आपके चरण कमल से, आपके पाद पद्मों से एक पत्थर लग गया था, उसमें से एक स्त्री निकल गई थी, नारी निकल गई थी, मेरा तो एक काठ का नाव है, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब, नहीं चाह सकता। भगवान ने आज्ञा दे दिया कि ठीक है पांव धो लो, और पांव धोने के बाद में राम जी कुछ देना चाहते थे, भगवान ने देना चाहते थे, और भगवान ने सीता जी को देखा, क्योंकि राम जी के पास तो कुछ था ही नहीं, तपस्वी भेष में थे। जानकी जी तो आभूषण लगा के गई थी, जानकी जी को राम को देखते ही जानकी जी समझ गई कि राम जी क्या चाहते हैं। यहाँ पति और पत्नी के संबंध को स्थापित किया, पति को बोलना नहीं पड़े कि हमें अभी इस वस्तु की जरूरत है, पत्नी को क्या कहते हैं अर्धांगनी, पति के आधा अंग है वो, उसको देख करके पति को समझना चाहिए कि अभी किस वस्तु की आवश्यकता है, वही पत्नी है। प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं कि गंधारी बहुत बढ़िया पतिव्रता स्त्री थी, जो गंधारी अपने पति के अंधे देख करके पति बांध लिया था। जानकी जी समझ गई कि प्रभु अभी कुछ चाहते हैं। जानकी जी ने अपने मुंद्रिका उतार करके प्रभु के हाथ में पकड़ा दिया, कोई देखा भी नहीं, और तो वाल्मीकि जी ने देख लिया, आचार्यों ने देख लिया, तो लिख दिया, कह दिया, प्रभु को पकड़ा दिया। समझ गए कि ये चीज चाहिए, वस्तु चाहिए प्रभु को। अभी आजकल के माताओं के पास पति का ही पैसा यदि गलती से उनके पर्स में चला जाए ना, और पति के जरूरत पड़ जाए, तो कहती है दे देना शाम को, मायके से लाई थी मैं, पापा ने दिया था मुझे, झूठ और ऊपर से बोल देना साथ में, है पति का ही पैसा, अधिकार उनका है उस पर, भगवान दे दिए, देना चाहते हैं, लो तुमने बड़ी सुंदर सेवा किया है, पैर भी धोया है, गंगा से पार किया है। भगवान के लिए सब वस्तु दुर्लभ नहीं था, ये गंगा जी उन्हीं के चरणों से निकली है, ये भगवद गीता उन्हीं के मुखारविंद से निकला है, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं था। लेकिन प्रभु संसार में शिक्षा देने के लिए सब कार्य करते हैं। प्रभु ने कहा ले लो, कहूं कृपाल ले ही उतर आई, और केवल क्या किया कि प्रभु ने जैसे आज्ञा किया वैसा ही प्रभु ने प्रभु के चरणों में लिपट गया, केवल पकड़ लिया, चरणों को लिपट करके समर्पण कर लिया, कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, आपकी हमने सेवा किया, आपकी शुश्रूषा किया, आपने आज्ञा किया, गंगा से पार किया, इसमें मेरी कोई भी खूबी नहीं है, आपने तो कृपा किया और दे करके अब मेरे को आप क्या कहते हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। हम लोग तो थोड़ी भी सेवा करते तो भगवान से इच्छा रखते हैं, सेठ लोग थोड़ा दान दे देना, तो दान देने के बाद में सेठ लोग क्या करते हैं कि इच्छा रखते हैं कि महाराज जी को दान दिए हैं भैया, थोड़ा पीठ पर थोपी जरूर लगना चाहिए, ये धन्यवाद। केवट इतने सेवा के बाद भी केवट ने कहा कि प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ दो सिद्धांत लिखते हैं, कहते हैं कि केवट चाहता भी नहीं था, और भगवान के दिव्य दर्शन से और उनकी सेवा से केवट के इंद्रियां निर्विषयी हो गई, काम रहित हो गया। रुक्मिणी जी भी यही बात कहती हैं कि आपके संतों के मुखारविंद से आपके गुणानुवाद सुनने के उपरांत हमारी इंद्रियां निर्विषयी हो गई हैं, अब संसार में लगी नहीं रहा। ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति आनी चाहिए हम सबको। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। समय बहुत धन्यवाद आप सबका, भगवान आप सबका मंगल करें, खूब भक्ति बढ़ाएं, निरंतर आते रहें आप सब। जय श्री कृष्ण।